Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Gambhiranandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Shvetashvatara Upanishad ke prathama adhyaya sambandha bhashya chal raha hai. न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागनयी हि अमृतत्व मानसु. न कर्म से न प्रजा से अर्थात संतान प्रजा पुत्र पौत्रादि से ले जाना है. धनेन न धन से अमृतत्वम आनसुहु अमृतत्व को प्राप्त कर सकते हो. ठीक है, यानी प्राप्त किया जा सकता है. त्यागे न एके अमृतत्वम आनसुहु त्याग से ही अमृतत्व को प्राप्त कर सकते हो. यानी अमृतत्व को प्राप्त किया जा सकता है त्याग से ही. धन से कर्म से प्रजा से किसी से आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ कर्म को ही दिखाना है, कर्म को ही दिखा रहे हैं. कर्म से आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं. आप अब जो भी कर्म कर रहे हैं ये सब जो है अंतःकरण शुद्धि के लिए साक्षात कारण नहीं है. ऊपर में भी आपको इसी भी बताया है, सोमम अपामा अमृता भूमा. ये भी बताया है अक्षयम ह वही चातुर्मास्य याजिन सुकृतम भवति. ये भी बताया है हाँ, इस व्रत यज्ञ कर्मादि करके आप उस अक्षय तत्व को आप नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते हैं. और ऊपर में तो बताया कि सुकृत यानी जो पुण्य है, पुण्य अक्षय हो जाता है, ऐसे बताया. ठीक है, ये सब उस जहां जहां अपने अपने जो यानी देश काल के अनुसार कर्म का महात्म्य को बताते हैं. उसको लेकर ये नहीं समझ लेना है कि उससे अमृतत्व को प्राप्त किया जा सकता है. और ये जो हम कर्म जो कर रहे हैं, ये जो सामान्य जो जीविका के लिए जो कर्म कर रहे हैं, बाकी अग्निहोत्रादि कर्म को छोड़कर कर्म मात्र में जो शास्त्र में जो विधान कर्म है, ये कर्म से हम जो जीने के लिए जो कर्म करते हैं, जीविका के लिए जो कर्म करते हैं, वो कर्म को नहीं लेना है. ये कभी भी शास्त्र में उसका विधान नहीं है. तो ये जो है जीने के लिए जो प्राणी जो कर्म में प्रवृत्ति होता है तो शास्त्र उसको विधान नहीं करता है. जो सहज में प्रवृत्ति है शास्त्र उसको विधान नहीं करता है. अज्ञात को ज्ञात कराना शास्त्र का धर्म है. आप जो नहीं जानते हैं, जिस पुण्य कर्म से स्वर्ग प्राप्त होगा अब उसको नहीं जानते हैं तो ऐसा कर्म को विधान करेगा. और आप विवाह करें आप ऐसा नहीं विधान नहीं करेगा, क्योंकि आपको बोलने से भी आप विवाह करते हैं हाँ, नहीं बोलने से विवाह करते हैं. कोई स्त्री के साथ संगम करे ये विधान करना आवश्यक नहीं है. आपके लड़का को आपको पुत्र को आप सिखाते नहीं है, अपने उसका उम्र के अनुसार समय जब आ जाता है वो अपने प्रवृत्ति हो जाता है. लेकिन आप करते क्या है, शास्त्र किसको विधान करता है. जो सहज जो कर्म है हाँ, जो प्राणी उसमें प्रवृत्ति हो जाता है उसको रूप देता है कैसा करने से ये तुम्हारा कल्याण होगा. विवाह तो करना है लेकिन विवाह कैसा करना है उसको सिखाता है. विवाह करे ये जो विधिलिंग प्रयोग नहीं करता है हाँ? आदेश नहीं देता है. लेकिन विवाह कैसा करना चाहिए, कैसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा, ये मंत्र ऐसे बहुत सारे यानी कर्मकांड में ऐसे आ जाते हैं. ठीक है, समझ रहे बात को हाँ. और बाकी ये नहीं शास्त्र में ये नहीं विधान नहीं होगा कि तुम इतने खाओ. आपको बोलने से खाएंगे नहीं बोलने से खाएंगे उसका विधान नहीं करेगा. अज्ञात चीज का ज्ञात कराना विधान करना शास्त्र का धर्म है। ज्ञात जो ज्ञात है प्राणी सहज रूप में जिसमें प्रवृत्ति हो जाते हैं प्राणी, तो उसका विधान नहीं करेगा। अग्निहोत्र तो करना है, अग्निहोत्र आदि तो कर्म तो होना ही चाहिए, लेकिन उसका कौन करता है? कोई जानता है कि अग्निहोत्र आदि कर्म करना चाहिए? अब भी इतने टीवी में इतने सारे प्रचार प्रसार हो रहा है, तभी तो कितने अग्निहोत्र आदि कर्म करते हैं? आप लोग करते हैं क्या बताओ? इतनी जान रहे हैं सुन रहे हैं, आप लोग करते हैं घर में? अब आप लोग तो बड़े बड़े वेदांति है ना, आप तो सब कर्म काम को सब छोड़ते हैं, आप सब वेदांति है, निर्गुण उपासक है, आप अग्निहोत्र आदि कर्म नहीं करते हैं। ये जो सुन करके है ना, हमको बहुत दुख भी होता है। क्या है, जैसे कह दिया कि मोक्ष साधन जो है कर्म नहीं है, और कर्म से ये होता है, ज्ञान से ये प्राप्त होता है, इससे विधान जब हो जाता है आदमी तुरंत छोड़ देता है कर्म को। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये जो है मुमुक्षुओं के लिए, ये अधिकारी पुरुषों के लिए, जो करते 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 कर्म से जिनका अंतकरण शुद्ध हो चुका है नहीं, बहुत कुछ हो गया और होगा ऐसा, उन लोगों के लिए होता है। लेकिन ये जो अभी मैं हम जो हमारे साधु समाज में भी हम जो देख रहे हैं, घर का छोड़ते हैं और ना संध्या बंदन ना कर्म ना कहे ऐसे कुछ नहीं करते हैं, और तुरंत से सन्यासी बन करके बस कपड़ा ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत ये होता है, बुरा हाल होता है। और बुरा हाल तो मैं एक घटना को सुना रहा था, बहुत बुरा हाल होता है, इसलिए कर्म को छोड़ना नहीं है। ऐसा कर्म इतने डट के कर्म करो, इतने डट के उपकार कर्म करो, सहायता करो, और बाकी जो जैसे अग्निहोत्र इतना डट के करो, वो आपने वो छूट जाएगा। आप खाएंगे तो कितना खाएंगे? 5 रसगुल्ला, 10 रसगुल्ला, 15-20 और कहां खा सकते हैं? जब यहां तक तो हो जाएगा तो छूट जाएगा ना वो। ऐसी समझना है, छोड़ने के लिए कोशिश नहीं करना है, प्रयास नहीं करना। ज्ञान होना चाहिए छोड़ना, लेकिन जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, परेशान होंगे। और ऐसे परेशान नहीं होगे तो आगे परेशान हो जाओगे, प्राप्त हाथ में तो आने वाला नहीं है। अच्छा, तो फिर जो है कहा कि प्लवा हेते अदृढ़ा यज्ञ रूप अष्टादशोक्तमवरम येषु कर्म। प्लवा, प्लवा का अर्थ क्या है? मैं आपका नाम भूल गया। अब साल में एक बार आऊंगा तो फिर क्या याद रहे, बोलिए प्लवा का क्या अर्थ है? नौका, यानी बहता हुआ, पानी बहता हुआ। अभी नौका भी पानी में बहता है, तो भी उसको प्लव कहते हैं क्या? प्रकाश भाई जी समझ रहे हैं क्या? एते प्लवाः, एते अदृढ़ाः यज्ञ रूपाः, आगे यज्ञ का ये सब विशेषण है, यज्ञ रूप का ये सब विशेषण है। तो इसलिए जो है ये प्लवाः, ये सब जो बहुवचन कर रहे हैं, प्लवाः यानी बहता हुआ, यहाँ पानी ले जाओ। ठीक है, कोई भी, तो यानी बहता हुआ। अभी यहाँ बहता हुआ का तात्पर्य अर्थ क्या निकालना है? क्या अतुल जी क्या अर्थ निकालेंगे? नहीं, जो यानी चंचल है, अस्थिर है, पानी स्थिर है क्या? इसलिए प्लवा। तो ऐसे अस्थिर जो होगा, ये जो कर्म जो है ये अस्थिर है, दृढ़ नहीं है। आगे अदृढ़ कहा, दृढ़ नहीं है। ठीक है, प्लवा का अर्थ यहाँ जी अस्थिर ले जाओगे, और अदृढ़ का अर्थ क्या लोगे? क्योंकि अदृढ़ का अर्थ भी आप अस्थिर बोल सकते हो, क्योंकि जो दृढ़ नहीं है, जो स्थिर नहीं है, वो दृढ़ नहीं है, अदृढ़ अस्थिर बोल सकते हो। हम प्लवा का अर्थ अस्थिर ले जाते हैं, और इसको जो है दृढ़ का अर्थ, जैसे डट के रहना, नाश नहीं होना, अदृढ़ का अर्थ नाश हो जाना, नहीं समझे? इसी प्रकार अर्थ कर लेना है, इसको नाशवान ले जाना है, ये आपका हिंदी अर्थ में भी दे रहा है वो। और ये जो है यानी परिवर्तनशील है, अदृढ़ का अर्थ दृढ़ नहीं है, अदृढ़ है, तो परिवर्तनशील है, आप ऐसा लीजिएगा और ये तो नाशवान ले लिया। तो जो अस्थिर है और जो नाशवान है ऐसे जो यज्ञ रूपा, ठीक है, अब वो यज्ञ रूपा कौन है? कहा कि अष्टादश अठारह, अठारह यज्ञ रूप है, हा? तो येशु येशु कर्म अवरम, उसको मैं जोड़ के लेता हूं अभी। येशु का अर्थ जिन में, जिन विषय में, येशु का अर्थ जिन विषय में, जिन विषय में क्या लेना है? जो ज्ञान के विषय में कर्म का अवरम निकृष्ट कहा, नीच कहा, हा? ठीक है, ज्ञान के विषय में जो कर्म को जो यानी निकृष्ट कहा, ठीक है, ऐसे जो कर्म जो है, हा? यज्ञ रूप आदि जो कर्म है, हा? वो यज्ञ रूप में अष्टादश जो बतलाया, यज्ञ रूप अष्टादश, और क्या क्या अष्टादश है, तो उसमें एक शास्त्र में आया, वो मुंडक उपनिषद में ऐसा आया, उसमें 16 ऋतु जरूरत पड़ते हैं, और जो है यजमान जरूरत पड़ता है, और उसकी पत्नी, हा? ऐसे 16, हाँ 16 ये ऋतिज और ये दो 18, ठीक है, ये 18 जो यज्ञ रूप है, हाँ बैठ कर जो यज्ञ करते हैं, जो यज्ञ रूप है, ये जो है ये अस्थिर है और जो है परिवर्तनशील है, ऐसे यज्ञ कर्म करने वाले ये है, इसलिए जो है कर्म जो है निकृष्ट माना गया है। येषु कर्म अवरम, ज्ञान के विषय में कर्म को जो है निकृष्ट माना गया है, ठीक है। एतत् श्रेयो यानी एतत् श्रेयः, आगे ये अभिनंदित जो है, अब इति समझ के लेना है, यानी ये सब कल्याणकारक है, इसी प्रकार इति जोड़ के लेना है, यानी उसमें लिखने भी नहीं है लेकिन थोड़ी समझ लेना है कि एतत् श्रेयः अर्थात ये जो सब कल्याणकारक है इसी प्रकार, हाँ ये मूढ़ा, ये अभिनंदति मूढ़ा, यानी ये मूढ़ा अभिनंदति, ऐसे जो मूढ़ लोग हैं, जो नहीं समझते हैं, मंद बुद्धि वाले हैं, वे लोग जो हैं क्या अभिनंदति, हाँ आनंदित हो जाते हैं, ये सब कल्याणकारक है, हाँ इसी प्रकार जान करके जो मूढ़ लोग जो हैं आनंदित हो जाते हैं। जरा मृत्यु ते पुनः एव अपियन्ति, अन्वय करो, ते को पहले लो, ते यानी वे जरा मृत्यु, जरा और मृत्यु को पुनः, फिर जरा और मृत्यु को अपियन्ति प्राप्त करते हैं, ठीक है। यज्ञ कर्म को आप इसी प्रकार यदि समझ जाएंगे, ये सबसे बड़ा कल्याणकारक है, हाँ? ये जो है ये सुन करके यज्ञ कर्म आदि को छोड़ना नहीं है। शंकराचार्य भगवान का आविर्भाव काल में लोग जो है इसे ज्ञान आदि को छोड़ करके, आचरण आदि को छोड़ कर यज्ञ कर्म में लग गए होंगे, क्योंकि महापुरुषों का अवतरण जो है, भगवान का अवतरण तब होता है समाज में किसी न किसी पक्ष का जब ये होने लगता है, हाँ क्या ग्लानि जो कहा ना, हाँ तो फिर जो है उस समय में उनका अवतरण होता है और उस पक्ष को लेकर के ये लोग दम लगाते हैं, नहीं तो हर उपनिषद उठाओ इतना खंडन मंडन जो होता है इससे ही ज्ञात होता है, ठीक है। और बाकी छोटे मोटे महापुरुषों का जो आंशिक अवतार जो महापुरुषों जो कहा जाता है, ये लोग भी जैसे आपका दयानंद सरस्वती जी, हाँ आर्य समाज के, ये भी एक पक्ष को लेकर दम लगा है, बुद्ध देव, हाँ ऐसे एक एक महापुरुष से एक एक चीज को लेकर दम लगाते हैं, और संसार में ये सब तो अपेक्षिक है, वो ये अपेक्षाकृत है, कोई भी चीज पूर्णता किसी में नहीं रहती है, तो कुछ समय के लिए उस देश काल के अनुसार वो अच्छा होता है, कुछ जो उन्नति विकास होता है विकास होता है, जिसका नाश होना नाश होता है, जिसको दबाना दबाना होता है, और जो चीज उठना उठना होता है, लेकिन फिर काल के अनुसार वो भी उसमें भी दोष आ जाता है, फिर वो भी दोष युक्त हो जाता है, फिर लोग बोलने लगे ऐसे किसे लिख दिया, ऐसे किसे बोल दिया, ऐसे किसे प्रचार प्रसार किया, फिर लोग फिर बोलने लगेंगे, फिर उसको फिर तोड़फोड़ करने लगेंगे, फिर उसको हटाने लगेंगे, फिर और चीज, हाँ हाँ किसी में भी पूर्णता नहीं है, किसी में पूर्णता नहीं है। अच्छा आप बोलोगे कृष्ण भगवान के काल में भी कैसा हुआ रहा था, उसमें भी बहुत ऐसी चीज, क्योंकि भगवद गीता में कर्म को जो कर्म का फल को जो त्याग करने के लिए जो कहा उसके ऊपर सारे जोर है, सारे जोर उसमें ही है। तो लोग जो है कर्म को ही त्याग रहे थे, शायद ऐसा लग रहा था, सिद्ध कर्म को ही त्याग रहे थे। इसीलिए कर्म को त्यागने से क्या होगा, कर्म को जो कर्म करने के बाद जो फल की आकांक्षा होती है, आशा होती है, उसको तोड़ना चाहिए, उसको निकलना चाहिए। क्रिया में तो कुछ नहीं है। हाँ हाँ, फल त्याग फल त्याग फल त्याग, और फल त्याग के ऊपर में क्या क्या दम लगा रहे। इसीलिए जो है हर युग में वही चीज है। अच्छा, श्री राम भगवान के काल में लोग जो है मर्यादा को तोड़ दिए होंगे। वो ऐसे मर्यादा निभा है, ऐसे मर्यादा नहीं। इसीलिए आप लोगों को जो है ना, मैं अभी क्या वेदांत तो सुन रहे हैं, लेकिन जब आपको समय मिलता है कभी आप रामायण पढ़ा करिएगा आप। हाँ, रामायण से आचरण शुद्धि होती है, और आज हम लोगों का आचरण शुद्धि जरूरत है। हम पिता माता का कर्तव्य निभा नहीं पाते हैं, भाई का कर्तव्य निभा नहीं पाते हैं, पत्नी का कर्तव्य निभा नहीं पाते हैं। हमको आज आचरण आवश्यक है। कृष्ण भगवान का जो भागवत है ना, आज बहुत खटपट करता है लोगों को। तो आज नाचने गाने लग गए हैं बस, केवल भागवत जो है नाचने गाने में ही भागवत है। और कथाकार लोग भी कोई कोई जो ऐसा तो कथाकार भी ऐसे कि वो आनंद लेते हैं, और दूसरे बहुत ऐसे कथाकार एक कथा करने से 1 लाख मिल जाता है, महीना भर रगड़ जाओ रगड़ जाओ 5-10 हजार मिलेगा। यही बात है। जिनको पैसा नहीं चाहिए पैसा नहीं चाहिए अलग बात है, लेकिन जो पैसा को ही जो मुख्य देते हैं, कथा करके पैसा को मुख्य देते हैं, तो वे लोग तो भागवत में प्रवृत्ति हो गए ना, लोगों का नचाना गाना, और उसे बहुत बहुत तरीका मिलता है। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, एक कृष्ण भगवान को किसी को एक बच्चे को बना दिया, हाथ में थाली रख दिया, घुमा दिया, बस उसमें 5-10 हजार उसे मिल जाएगा। बहुत सारे तरीका है, तो ऐसे हो गया। लेकिन रामायण जो है आपको पहले जो रामायण पढ़ना चाहिए, बिल्कुल रामायण पढ़ना चाहिए, बहुत आचरण शुद्ध होता है। कृष्ण भगवान का तो आचरण तो है ही है, लेकिन थोड़ा जटिलता आ जाती है। तो ये जो है मूड जो है वो आनंदित हो जाता है, ते फिर बोध है, फिर जरा मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ठीक है, मुंडक उपनिषद। अच्छा, आगे भी और एक मुंडक उपनिषद का प्रमाण दे रहे हैं। नास्त्य कृतः कृतेन न अस्ति अकृतः कृतेन, संधि विच्छेद करोगे तो मिलेगा, न अस्ति अकृतः कृतेन। ठीक, अकृतः, अकृतः का क्या अर्थ है? पहले कृत का अर्थ क्या समझो। हाँ, कृतः का अर्थ है किया हुआ, यानी बना हुआ, निर्माण हुआ। हाँ, कृतः अनित्य है, जो कृत होता है वो अनित्य होता है, क्योंकि जो उत्पन्न होता है वह नित्य होता है। अकृत नित्य है, जो उत्पन्न नहीं होता है वह नित्य है। तो कहा कि न अस्ति अकृत, जो अकृत न अस्ति। ठीक है, यानी इस संसार में, अस्मिन संसारे, मुंडक उपनिषद वहां का प्रसंग जो है, अस्मिन संसारे अकृत न अस्ति। हाँ? कोई नित्य नहीं होता इस संसार में। कृतेन किम प्रयोजनम। हाँ? तो फिर जो है ये जो कृतेन यानी ये जो अनित्य है, हाँ, कृत का अर्थ अनित्य है। हाँ? तो फिर इस अनित्य में क्या प्रयोजन है? एक तो इस संसार में नित्य तो कोई नहीं होता है। हाँ, क्या क्या जो उत्पन्न हुआ है वह, हाँ, वो अनित्य है। हाँ, नहीं, कहीं उल्टा मत समझिएगा। हाँ, अब कृतेन किम प्रयोजनम। हाँ, ये कृत अर्थात अब कृत शब्द से जो यानी जो उत्पन्न हुआ है जो है, हाँ, अब क्या लेना है, थोड़ी सी और थोड़ा सा तात्पर्य अर्थों के लेना है। यानी जो हम कर्म करते हैं और वो कर्म करने से उससे जो फल उत्पन्न होता है, हाँ, ऐसा कर्म का क्या प्रयोजन है? हाँ, ऐसा थोड़ा सा तात्पर्य अर्थ को करके आपको घटाओ, घटा कर लो सीधे, तो क्योंकि ये सब छोटा छोटा शब्द है, उसमें बहुत सारे तात्पर्य अर्थ रहता है। ठीक, हाँ, हो गया आगे। क्योंकि आप लोगों से मुझे बोलते हैं कि समझे आप पाठ जो धीरे धीरे चलाते हैं, जल्दी नहीं चलाते हैं। अब मैं थोड़ी सी गाड़ी को ठीक से मध्यम स्पीड में चला रहा हूं, ज्यादा ना कम है। हाँ, मंद से नहीं है और स्पीड से नहीं। चलाने के लिए क्या रखा है, वो तो ऐसी फटाफट करेंगे तो आगे बढ़ जाएगा। देखो, कर्मणा बध्यते जंतुर विद्यया च विमुच्यते। जंतु हो, हाँ जंतु को पहले ले जाना है, जंतु यानी प्राणी, ये प्राणी जो है कर्म से बंध जाता है। हाँ विद्या च विमुच्यते, और ज्ञान से मुक्त हो जाता है, विमुक्त हो जाता है। कर्म से किसे बंध जाता है? हाँ याद रखिए, हाँ हाँ उसमें दो बंधकत्व दोष है कर्म में, एक कर्तृत्व अभिमान है और दूसरा फल की आकांक्षा है। अब ये दो चीज को ही भगवद गीता तोड़ती है। बस आकांक्षा नहीं करना है और कर्तृत्व अभिमान को त्याग करना है। अब कर्तृत्व अभिमान को कैसे त्याग करना है, आकांक्षा कैसे करना, फिर जो है कर्म का फल को ईश्वर समर्पित होकर करना है, ईश्वर परिधान ईश्वर समर्पित होकर करना, ये सारे आता है। करते सुनते मत जाइएगा, करते जाइएगा, करिएगा। हजार बार सुनना एक करना उससे बड़ा ही होता है, करते जाइएगा। तस्मात कर्म न कुर्बंती यतः पार नारायण नारायण, फिर आप बोलेंगे कि समझिए ऐसे कर्म। जो पारदर्शी है, पारदर्शी जो यति है, हाँ जो पार को जो दर्शन कर लिया है वो जो यति, हाँ और आप यदि पारदर्शी यति, यति यानी यत्न करने वाला, जो मुनि ऋषि, हाँ यत्न करने वाला, प्रयास करने वाला, ठीक है, यदि आप पारदर्शी यति हैं तो फिर आप कर्म मत कीजिएगा। हाँ कर्म न कुर्वन्ति तस्मात कर्म न कर, कर्म मत कीजिएगा यदि आप पारदर्शी यति हैं। अच्छा अब अपने आप को जो मानते हैं तो कोई बात नहीं है, वो अपने आप को मानना कोई बुरी बात नहीं है, आप मानिएगा जो मानना मानिएगा, लेकिन ये भी मानिएगा कि मैं सारा संसार इतना बड़ा जगत को चलाने वाला मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, ये समझिएगा, इतनी विशाल भाव लाइएगा। और इतना बड़ा विशाल भाव लाएंगे थोड़ा सा कोई टोक देगा तो बस चार पांच गाली सुना देंगे उसको, ऐसा नहीं चलेगा।